मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 8 फरवरी 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबसे अनुभव के महत्व पर कुछ बातें करने जा रहा हूं और इनफैक्ट सच पूछिए तो आज का यह विषय कहीं न कहीं सीधे सीधे कल के विषय से ही जुड़ा हुआ है। और आपको ध्यान होगा कि कल मैं इस बात के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से जब हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसके बीच के एक दशक या डेढ़ दशक यानी कि 10 से 15 साल के बीच का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें हमारे विचार लगभग लगभग थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ एक जैसे होते हैं। फिर जैसे ही हम सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं हमारे विचार पहले के विचार बदल चुके होते हैं, जब थर्ड में एंटर करते हैं तो और बदल चुके होते हैं, तो और इस तरीके से हर 10 साल या 15 साल के गैप के बाद हमारे अपने ही विचारों में परिवर्तन आते चले जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत जरूरी और व्यावहारिक बात भी है। मैंने आप लोगों से एक और गुजारिश की थी फ्रेंड्स कि आप सब जिस भी उम्र में अभी हो अपने पिछले दौर की चीजों को याद करने की कोशिश करें, घटनाओं को ध्यान में लाएं, अपने विचारों के बारे में सोचें, विचार करें और देखें कि क्या अभी भी वे जस के तस बने हुए हैं या वो थोड़े से हिलने लगे हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में भ्रम पैदा होने लगा है या कि वो बिल्कुल ही बदल चुके हैं। जब आप इस तरह से अपना मूल्यांकन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और ज्यादा अच्छे से व्यवहार में भी ला पाएंगे। तो उसी विषय को मैं आज थोड़े से और आगे बढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि बात थोड़ी सी अधूरी रह गई है। एक बहुत विचित्र सी बात है अनुभव के बारे में। विचित्र बात यह है कि जब आप आज के भारतीय समाज को देखेंगे तो आप ज्यादातर पाएंगे कि लोग प्रेम विवाह का समर्थन नहीं करते। और यहां मैंने जिनके लिए लोग शब्द का इस्तेमाल किया है इसमें मैं उन लोगों को शामिल कर रहा हूं जो एक प्रकार से 50 की उम्र को पार कर चुके हैं, यानी कि जिनके विचार स्थायी से हो गए हैं, यानी कि जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल के लंबे दौर का अनुभव हासिल किया है, जिनके बाल या तो लगभग लगभग सफेद होने को आ गए हैं या सफेद होने शुरू हो गए हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। अदरवाइज उससे कम उम्र के जो लोग हैं, पहले तो शुरू में जो बहुत यंग होते हैं तो कहते हैं प्रेम विवाह ही होना चाहिए, फिर जब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा उन्हें डाउट लगने लगता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जब वो 50 को पार कर लेते हैं फिर तो लगभग लगभग उन्हें यही लगने लगता है कि नहीं होना चाहिए। और आपको ताज्जुब होगा कि मैं इन लोगों में उन लोगों को भी शामिल कर रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम विवाह किए, घर वालों से लड़ झगड़ कर प्रेम विवाह किए, और जब उनके बच्चे अब प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह का मतलब इसमें आप इंटरकास्ट को ले सकते हैं, इंटर रिलीजन को ले सकते हैं, तब वे खुद अब अपने बच्चों का इस बारे में विरोध कर रहे हैं। पहले जब उनके माता पिता ने उनके लिए विरोध किया तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया और इसे ही सही माना, और जब उनके बच्चे अब इसे सही मान रहे हैं तो उसे वो गलत ठहरा रहे हैं। तो ये बदलाव क्यों होता है? दोस्तों ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ अनुभव के स्तर पर होता है। और मुझे लगता है कि शायद प्रेम के क्षेत्र में जो समझ को लेकर के गड़बड़ियां हुई हैं उसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय समाज एक प्रकार से न केवल प्रेम विवाह का ही विरोधी हो गया है बल्कि प्रेम का भी विरोधी हो गया है। ये बात अलग है कि अब धीरे धीरे समाज काफी कुछ बदल भी रहा है। दरअसल होता क्या है, देखिए भारतीय समाज की अपनी एक परंपराएं हैं, अपने एक संस्कार हैं। भारतीय समाज प्रेम विवाह को इनफैक्ट एक बड़े दूसरे रूप में देखता है, और वो रूप यह है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो मान करके चलता है भारतीय समाज कि आप उससे विवाह करेंगे ही करेंगे, राइट? यानी कि प्रेम और विवाह को वो अलग अलग करके नहीं देख सकता, या कह लीजिए कि केवल एक सेरेमनी का फर्क है। जब कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो ये मानकर चला जाता है कि यह उससे विवाह करेगा, बस दिन की बात है कि मुहूर्त निकलवा करके और सात फेरे होने हैं, यानी कि दोनों को जोड़ कर देखते हैं। जब वो प्रेम के रूप को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो प्रेम है ये भावनात्मक स्तर से आगे बढ़ चुका हो या बढ़ जाए, और अगर भावनात्मक स्तर से आगे बढ़ जाता है तो भारतीय संस्कार कहता है कि नहीं, फिर तो विवाह होना ही चाहिए। और जो उम्र प्रेम करता है वो उम्र नादानी की उम्र है, नादानी की उम्र है, उसमें इतनी समझ नहीं होती है उस उम्र में कि व्यक्ति यह निर्णय ले सके कि मेरे जीवन के लिए, एक क्योंकि वो लंबा जीवन है, मेरे जीवन के लिए कौन मेरा सही साथी हो सकता है, इसीलिए फिर वो उसका विरोध करने लगता है। ये बात अलग है कि जब प्रेम विवाह को किनारे करके और जब अरेंज्ड मैरिज की बात आती है तो उसमें फिर हम किन चीजों को महत्व देते हैं परिवार वाले, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि वो भी फिर बहुत सही निर्णय लेने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाते, फिर वहां कहीं परिचय काम आने लगता है, कहीं धन काम आने लगता है, कहीं पद काम आने लगता है, पता नहीं और क्या क्या चीजें फिर वहां काम करने लगती, वहां भी इनफैक्ट सही मायने में तो जीवन किनारे ही हो जाता है। खैर वो एक अलग बात है, मैं तो यहां एक दूसरे विषय पर बात कर रहा हूं जिसमें मैं अनुभव के महत्व को खासकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मित्रों देखिए कि जैसे ही उन्होंने प्रेम विवाह किया, उस समय के उनके अपने अनुभव थे, लेकिन जब उनके विवाह, उनके बच्चे प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो उनके अपने अब अनुभव मैच्योर होकर के उसी के विरोधी हो गए हैं। ऐसा केवल समय के गुजर जाने के कारण होता है। दोस्तों अब राजनीति को आप देखिए कि खासकर जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उसी दौर में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो, वो भी यंग थी ये भी यंग थे, उस समय पूरी की पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के बहुत प्रोमिनेंटली कहा गया कि नहीं अब युवाओं का दौर आ चुका है, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, तब ये जो राजनीति है वो ज्यादा सक्षम हो सकेगी, अच्छी हो सकेगी, इसमें जो करप्शन है वो खत्म हो सकेंगे, ये लोग डायनामिक होते हैं, विजनरी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, देश खुशहाल हो जाएगा। और उस समय बहुत से युवाओं को पूरी दुनिया में यह हुआ था जोड़ने की कोशिश की गई, अमेरिका जैसे में बहुत कम उम्र के बिल क्लिंटन जैसे प्रेसिडेंट आए, ठीक है उन्होंने अपने ढंग से अपने काम को अंजाम दिया, लेकिन अब आप देखें कि क्या हो रहा है। और ये जब राजनीति का जो दौर था लगभग लगभग उसके कुछ सालों के बाद, खासकर उदारीकरण के बाद 1995 के बाद से कंपनियों में भी इस बात की डिमांड की जाने लगी कि नहीं नहीं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाया जाए, युवाओं को सीईओ बनाया जाए यानी कंपनी का हेड बनाया जाए, क्योंकि जो युवा यंग जो ब्लड है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक होता है और ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल करेगा। कुछ साल तक बकायदे उनके अनुभव को देखा गया, उनके परिणामों को देखा गया, और अब फिर आप दूसरी तरह की सोच को देख रहे होंगे कि नहीं ठीक है युवा तो आएंगे ही, उन्हें आना ही चाहिए, लेकिन शुरू में आकर के वो जरा सा पाठशाला में शामिल हों, यानी कि जीवन के पाठशाला में शामिल हों, इसके बाद वो कर्म क्षेत्र में उतरे। उदाहरण के तौर पर अभी आप देखें, दो राज्यों को देख लीजिए, दो राज्यों में ही मुख्यमंत्री को लेकर के युवा और जो अनुभवी राजनेता होते हैं उनमें संघर्ष था। एक संघर्ष आपको राजस्थान में दिखाई देता है जो गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में था, सचिन पायलट जी यंग हैं लेकिन गहलोत जी अनुभवी राजनेता हैं। दूसरी ओर आप मध्य प्रदेश में भी पाते हैं, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, दूसरी तरफ कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी एक मेच्योर्ड पॉलिटिशियन है, नो डाउट कि ज्योतिरादित्य जी भी सेंटर में बकायदे मिनिस्टर रह चुके हैं लेकिन उम्र की तुलना में तो वो काफी कम है, लेकिन दोनों जगह जो महत्व दिया गया वो महत्व दिया गया उम्र को। उम्र को कहने का मतलब है अनुभव को, कि जो एक्सपीरियंस होते हैं मित्रों उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो दक्षिण कोरिया होकर के आया हो या जा जिसे वहां के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। दक्षिण कोरिया की एक विचित्र परंपरा है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक ऑफिस है और उस ऑफिस में आप हेड हैं, प्रमुख है, और आप यंग है, मान लीजिए कि आपकी उम्र 50 साल की है, चलिए यंग नहीं कहूं अधेड़ कह लीजिए, 50 साल की उम्र में है, और आपका जो असिस्टेंट है आपके ऑफिस में जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनकी उम्र 55 साल है, तो वहां भले ही वो आपके नीचे है, आपके अंडर में काम कर रहा है, लेकिन आपको उनके उम्र को तवज्जो देनी ही होगी, उनके बातों को ध्यान से सुनना होगा और उनकी बातों को मानना होगा और उन्हें पूरा सम्मान देना होगा, भले ही वो आपके जूनियर क्यों न हों, और छोटा सा दक्षिण कोरिया आप देखिए कि डेवलपमेंट के किस शिखर पर पहुंच चुका है। तो वहां की पारिवारिक परंपरा भी यही है, सामाजिक परंपरा भी यही है और प्रशासनिक और बकायदे कंपनी की जो कारपोरेट कल्चर है वह भी यही है कि अनुभव को ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। और मुझे लगता है मित्रों कि यह अपने आप में वैज्ञानिक भी है, साइंटिफिक भी है, क्योंकि तर्क की अपनी सीमाएं होती हैं और अनुभव की अपनी एक धरोहर होती है। इन दोनों को ही मिला करके हम सही मायने में एक परफेक्ट जो डिसीजन है उसके लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों अपने दिमाग को खुला रखिए, जो अनुभवी लोग हैं उनसे मिलते रहिए, उन्हें ध्यान से सुनिए, गौर से देखिए, उन्हें आउटराइट रिजेक्ट मत कीजिए। वो जो भी बात कह रहे हैं उन पर विचार कीजिए, तर्क के साथ विचार कीजिए और अपने अनुभवों के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए कि ठीक है मैं आपके बातों पर विचार करूंगा, आप नोट कर लीजिए। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप उन्हीं के करीब पहुंचते जा रहे हैं। मैं हर मामलों में ये बात नहीं कह रहा हूं, बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो उनकी गलत हो सकती हैं, वो क्योंकि वो भी अपनी धारणाओं को बदलने में नाकाम सिद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक वो अपने अनुभवों की बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो जीवन की सर्वोच्च प्रयोगशाला है, वो लैब है, उस लैब का हम सबको फायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर बातें होंगी। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।